एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी किताब जिसने सही मायनों में किशोर साहित्य का, यंग एडल्ट लिटरेचर का चेहरा ही बदल दिया।
हाँ बिल्कुल, जूडी ब्लूम की आर यू देयर गॉड इट्स मी मार्गरेट।
एग्जैक्टली, 1970 में आई थी ये किताब और आते ही मतलब इसने तहलका मचा दिया था।
जूडी ब्लूम की खासियत ही यही थी, वो उन विषयों पर लिखती थी जिन पर आम तौर पर लोग बात करने से कतराते थे, खासकर बच्चों और किशोरों के संदर्भ में।
हाँ, जैसे यौवन के बदलाव, धर्म, पहचान, तलाक, ये सब।
बिल्कुल, उनका मानना था कि बच्चों को, किशोरों को ईमानदार साहित्य मिलना चाहिए जो उनकी असल जिंदगी, उनके सवालों, उनकी उलझनों को दिखाए, पर्दा डालने की बजाय।
और ये उपन्यास मार्गरेट इसी ईमानदारी की एक बेहतरीन मिसाल है।
सही कहा।
और सोचिए, वो दौर था 1970 का अमेरिका, काफी उथल पुथल वाला समय था।
हाँ, सामाजिक बदलाव हो रहे थे, पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं।
लोग सवाल उठा रहे थे पारंपरिक मूल्यों पर, स्त्री अधिकारों पर, यौनिकता, धार्मिक आजादी, इन सब पर एक नई बहस छिड़ी हुई थी।
ऐसे माहौल में ये किताब आती है जिसे हम शायद प्रॉब्लम नॉवल कह सकते हैं, मतलब यथार्थवादी कहानी जो टीनेजर्स की असली मुश्किलों पर बात करे।
हाँ बिल्कुल, और इसकी प्रतिक्रिया भी मिली जुली रही है ना।
हाँ, बहुत से पाठकों ने, लाइब्रेरियंस ने तो इसे हाथों हाथ लिया, उन्हें लगा कि हाँ ये जरूरी किताब है।
लेकिन
लेकिन इसकी साफगोई की वजह से, खासकर पीरियड्स पर, बॉडी चेंजेस पर और धर्म को लेकर जो सवाल मार्गरेट पूछती है, उसके कारण काफी विवाद भी हुआ।
सेंसरशिप की मांग भी उठी थी शायद।
हाँ, कुछ स्कूलों और समुदायों में से हटाने की कोशिशें हुई, तो ये एक तरह से ब्लूम के करियर में मील का पत्थर भी बनी। इसने दिखाया कि वो किशोरों के मन की बात को कितनी सच्चाई से कह सकती हैं।
तो आज हम इसी उपन्यास की गहराइयों में उतरेंगे। इसकी कहानी क्या है, मार्गरेट और दूसरे पात्रों का सफर कैसा है,
इसके मुख्य विषय क्या हैं और कहानी में वो कौन से मोड़ आते हैं जो इसे खास बनाते हैं।
बिल्कुल, तो चलिए, कहानी शुरू कहां से होती है, मार्गरेट की दुनिया में हम कैसे दाखिल होते हैं?
कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े बदलाव से। 11 साल की है मार्गरेट साइमन और वो अपने माता पिता के साथ न्यूयॉर्क शहर की भागदौड़ छोड़कर न्यू जर्सी के एक शांत से उपनगर फारब्रूक में शिफ्ट हो रही है।
तो शहर से सबब, ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है।
हाँ, और ये सिर्फ घर बदलना नहीं है, ये उसके जीवन का एक अहम मोड़ भी है। वो बचपन और किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ी है।
अच्छा,
पूरी कहानी असल में मार्गरेट की छठी कक्षा के एक साल के दौरान घटती है।
और इसी एक साल में उसकी जिंदगी में बहुत कुछ घटता है ना।
उसकी कश्मकश शुरू होती है।
हाँ, और ये कश्मकश कई लेवल्स पर है। एक तो बाहरी दुनिया है,
जैसे जिसे नए स्कूल में एडजस्ट करना, दोस्त बनाना, पहली पहली बार लड़कों के बारे में सोचना, वो एहसास, और सबसे बढ़कर अपने शरीर के बदलने का बेसब्री से इंतजार करना।
हाँ, ये तो इस किताब का बहुत बड़ा हिस्सा है। पीरियड्स कब आएंगे, ब्रा का पहनूंगे, ये सब सवाल।
बिल्कुल, ये उसकी बाहरी चिंताएं हैं, लेकिन इसके साथ ही एक ज्यादा गहरा संघर्ष भी चल रहा है उसके अंदर।
वो क्या है?
वो है अपनी पहचान की तलाश, खासतौर पर उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान।
हाँ, और यहीं ये उपन्यास बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स का बैकग्राउंड अलग अलग है।
हाँ, पिता यहूदी हैं, हर्ब साइमन, और माँ बारबरा, वो ईसाई परिवार से थीं, लेकिन उन्होंने शादी के लिए अपना धर्म छोड़ दिया था।
और उन्होंने मिलकर ये तय किया कि मार्गरेट को किसी खास धर्म की शिक्षा नहीं देंगे।
हाँ, ताकि वो बड़ी होकर खुद अपना रास्ता चुन सके।
सुनने में तो ये बड़ा लिबरल और अच्छा लगता है, लेकिन एक 11 साल की बच्ची के लिए
ये एक बड़ी उलझन बन जाता है। उसे लगता है कि वो कहीं फिट नहीं होती, न इधर की न उधर की।
और इसी उलझन में वो ईश्वर से बात करना शुरू करती है।
हाँ, आर यू देयर गॉड इट्स मी मार्गरेट, ये सिर्फ किताब का टाइटल नहीं है, ये मार्गरेट का कोप करने का तरीका है।
अपनी मुश्किलों से, अपने सवालों से जूझने का एक निजी रास्ता।
बिल्कुल, एक बच्चे की बहुत ही मासूम, बहुत ही सच्ची पुकार है ये।
तो इस सफर में उसके साथ कौन कौन है, मुख्य पात्र कौन है?
सबसे पहले तो खुद मार्गरेट बहुत जिज्ञासु है, सेंसिटिव है, अपने अंदर झांकने वाली लड़की है। फिर उसकी माँ बारबरा, जिन्होंने प्यार के लिए एक बड़ा फैसला लिया था, और पिता हर्ब, जो शायद चाहते हैं कि धर्म को लेकर कोई झगड़ा ना हो घर में।
और ग्रैंडपेरेंट्स भी है ना, दोनों तरफ के।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क में दादी सिल्विया हैं, पिता की माँ, वो बहुत जिंदा दिल हैं, यहूदी संस्कृति से जुड़ी हैं और मार्गरेट की बहुत अच्छी दोस्त और राजदार भी हैं।
अच्छा।
और दूसरी तरफ है ओहायो वाले नानी नाना, माँ के पेरेंट्स, वो कट्टर ईसाई हैं और बेटी के इस इंटरफेथ मैरिज से कभी खुश नहीं थे।
तो एक तरह का तनाव तो पहले से मौजूद है परिवार में।
बिल्कुल। और फिर न्यू जर्सी में उसकी नई दोस्त बनती है नैन्सी व्हीलर।
हाँ, नैन्सी।
नैन्सी उसे वहाँ के माहौल में ढलने में मदद करती है, लड़कियों के ग्रुप की जो डायनामिक्स होती है उसे मिलवाती है।
तो ये सब किरदार मिलकर मार्गरेट की दुनिया रचते हैं।
हाँ, और इस दुनिया के बीच में मार्गरेट अपनी यात्रा पर है। उसके सबसे बड़ी इच्छा क्या है? नॉर्मल होने की।
नॉर्मल किस सेंस में?
हर सेंस में वो चाहती है उसे पीरियड्स आ जाएं जैसे उसकी सहेलियों को आ रहे हैं, वो ब्रा पहने, सहेलियों के ग्रुप में पूरी तरह फिट हो जाए और उसे ये भी पता चले कि उसकी धार्मिक पहचान क्या है, यहूदी या ईसाई।
तो हम देखते हैं कि वो कैसे अपने शरीर के बदलावों का इंतजार करती है।
हाँ, और कैसे दोस्ती निभाती है। पहला क्रश होता है उसे, वो भावनात्मक रूप से बड़ी हो रही है।
और साथ ही वो आध्यात्मिक खोज भी चल रही है।
बिल्कुल। वो अलग अलग धर्मों को समझने की कोशिश करती है, ईश्वर से उसका संवाद गहरा होता जाता है।
और इस पूरी यात्रा में वो कैसे बदलती है?
दिलचस्प बात यह है कि वो शुरू करती है बाहरी चीजों से, पीरियड्स, ब्रा, धर्म का लेबल, लेकिन धीरे धीरे वो अंदर की तरफ मुड़ती है।
अच्छा।
हाँ, वो बाहरी पहचानों से हटकर अपनी अंदरूनी समझ और सेल्फ एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ती है। वो समझने लगती है कि पहचान कोई बैज नहीं है जिसे लगा लिया, ये तो एक पर्सनल जर्नी है जो चलती रहती है।
ये तो मार्गरेट की बात हुई, लेकिन उसके माता पिता बारबरा और हब, उनकी भी तो अपनी एक यात्रा चल रही होगी इस दौरान।
हाँ बिल्कुल। उनका इरादा तो अच्छा था, जैसा हमने कहा, वो मार्गरेट को उस तकलीफ से बचाना चाहते थे जो शायद बारबरा को झेलनी पड़ी थी।
अपने परिवार से अलग होने का दर्द जब उन्होंने हब से शादी की।
हाँ, उन्हें लगा कि मार्गरेट को कोई धर्म न देना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है।
पर हुआ उल्टा।
हाँ, अनजाने में ही सही, उन्होंने मार्गरेट के लिए एक आध्यात्मिक खालीपन, एक वॉइड सा बना दिया।
और उपन्यास ये दिखाता है कि उन्हें भी इस बात का एहसास होता है धीरे धीरे।
बिल्कुल। उन्हें समझ आता है कि मार्गरेट को सिर्फ चुनने की आज़ादी नहीं बल्कि गाइडेंस की, सहारे की, ईमानदारी की भी ज़रूरत है। उन्हें भी अपने अतीत के फैसलों का सामना करना पड़ता है।
ये बात सोचने वाली है कि पेरेंट्स की अच्छी नीयत भी कभी कभी बच्चों के लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है।
बहुत सही कहा। दूसरी तरफ दादी सिल्विया हैं, वो एक मजबूत पिलर की तरह हैं मार्गरेट के लिए।
हाँ, वो बहुत प्यारी लगती हैं।
वो मार्गरेट को बिना शर्त प्यार करती हैं, उसकी हर बात सुनती हैं। हाँ, उनकी ख्वाहिश है कि मार्गरेट यहूदी बने, वो उसे सिनेगॉग ले जाती हैं। लेकिन वो धीरे धीरे ये भी समझती हैं कि आखिरकार रास्ता तो मार्गरेट को खुद ही चुनना होगा। उनका प्यार किसी धर्म के लेबल से बंधा नहीं है।
वो एक तरह से भावनात्मक सहारा देती हैं।
हाँ, जब मार्गरेट अपने माँ बाप के बीच फंसा हुआ महसूस करती है या धर्म को लेके उलझन में होती है, तो दादी सिल्विया का प्यार, उनकी जिंदा दिली, उसे हिम्मत देती है।
और फिर नैन्सी व्हीलर है और उसका वो क्लब प्री टीन सेंसेशंस।
हाँ, उसमें मार्गरेट के अलावा दो और लड़कियां हैं, जेनी और ग्रेचिन। ये क्लब उस उम्र की लड़कियों की दुनिया का एक छोटा सा मॉडल है।
नैन्सी कैसी है उसमें? लीडर टाइप?
हाँ, ऊपर से तो काफी कॉन्फिडेंट दिखती है, लेकिन थोड़ी शो ऑफ भी करती है। जैसे वो झूठ बोल देती है कि उसे पीरियड शुरू हो गए हैं।
अच्छा, क्यों?
फिट इन होने के लिए।
हाँ, शायद।
और क्लब की सारी बातें किसके इर्द गिर्द घूमती हैं? ब्रा पहनना, लड़कों के नाम लिखना, किसके पीरियड्स पहले आए।
और वो मंत्र, वी मस्ट इंक्रीज आवर बस्ट।
हमें अपना वक्षस्थल बढ़ाना ही होगा। ये दिखाता है कि दोस्ती में सहारा भी है, लेकिन एक दूसरे से आगे निकलने का, फिट इन होने का प्रेशर भी बहुत है।
ये उस उम्र की इनसिक्योरिटीज को दिखाता है।
बिल्कुल। कैसे वो ग्रुप बनाकर अपनी बदलती बॉडी और फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं।
तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? ये क्लब और ये इंतजार।
हाँ, तो मार्गरेट न्यू जर्सी आ गई है। शुरू में अकेलापन महसूस करती है, ईश्वर से बातें शुरू होती हैं, फिर नैन्सी से दोस्ती, क्लब का बनना।
और वो फिट होने की कोशिश में लग जाती है।
हाँ, वो भी ब्रा खरीदती है, लड़कियों के साथ मिलकर वो अजीब सी एक्सरसाइज करती है। ये सब बाहरी दुनिया चल रही है,
लेकिन अंदर की खोज, वो कैसे आगे बढ़ती है?
वो साथ साथ चलती है। एक तरफ शरीर को लेकर चिंता बढ़ती है, सहेलियों के पीरियड शुरू हो जाते हैं, उसका इंतजार लंबा होता जाता है, उसे लगता है वो पीछे रह गई है।
इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा।
हाँ, और दूसरी तरफ स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिलता है धर्म पर रिपोर्ट बनाने का।
अच्छा, ये एक टर्निंग पॉइंट है शायद।
हाँ, यहाँ से उसकी आध्यात्मिक खोज तेज हो जाती है। वो दादी के साथ सिनेगॉग जाती है, फिर वो खुद से अलग अलग चर्च भी जाने लगती है।
अकेले?
हाँ, कभी कभी। प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, यहाँ तक कि कैथोलिक चर्च में कन्फेशन सुनने भी पहुंच जाती है। वो हर जगह एक कनेक्शन ढूंढ रही है, एक आहा मोमेंट।
और क्या उसे मिलता है वो मोमेंट?
नहीं, उसे कहीं भी वो जुड़ाव महसूस नहीं होता। ईश्वर से उसकी बातें अब और जटिल हो जाते हैं, सवाल और गहरे। उसे लगता है कि वो शायद कहीं की नहीं है।
ये उलझन तो बढ़ती जा रही है।
हाँ, और ये अपने चरम पर पहुंचती है सर्दियों की छुट्टियों में। ये उपन्यास का क्लाइमैक्स कह सकते हैं।
क्या होता है तब?
उसके नानी नाना ओहायो वाले, जिनसे वो कभी मिली नहीं थी, वो अचानक क्रिसमस पर आ जाते हैं।
ओह, ये तो अप्रत्याशित था।
बिल्कुल, और घर में जबरदस्त तनाव फैल जाता है। वो लोग मार्गरेट पर ईसाई बनने का दबाव डालते हैं।
और तभी?
तभी दादी सिल्विया भी पहुंच जाती हैं हनुका के तोहफे लेकर।
अरे बाप रे, लिविंग रूम में क्या हुआ होगा?
हाँ, वो सीन बहुत मार्मिक और दुखद है। दोनों तरफ के ग्रैंड पेरेंट्स मार्गरेट को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी धार्मिक पहचान उस पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं।
और बेचारी मार्गरेट,
उसके लिए ये देखना बहुत तकलीफदेह होता है कि धर्म, जिसे वो शायद सुकून और पहचान का जरिया मान रही थी, वो कैसे बंटवारे और दर्द की वजह बन सकता है।
उसका मोह भंग हो जाता है एक तरह से।
हाँ, वो गुस्से और निराशा में अपने कमरे में भाग जाती है और ईश्वर से चिल्ला कर कहती है कि उसे किसी से कोई वास्ता नहीं रखना, उसे कोई धर्म नहीं चाहिए।
ये तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है उसके लिए।
हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट है। इस टकराव के बाद मार्गरेट एक बड़ा फैसला लेती है।
क्या?
वो अपने माता पिता से बहुत साफ साफ कह देती है कि वो अभी कोई धर्म चुनने को तैयार नहीं है, न मंदिर न चर्च, वो सिर्फ मार्गरेट रहना चाहती है।
और उसके पेरेंट्स?
वो मान जाते हैं। शायद उन्हें पहली बार एहसास होता है कि उन्होंने मार्गरेट को कितनी मुश्किल में डाल दिया था। ये मार्गरेट का अपने लिए स्टैंड लेना है, उसकी मैच्योरिटी का सबूत है।
वाह, ये तो वाकई एक पावरफुल मोमेंट है। इसके बाद क्या होता है? क्या उसे शांति मिल जाती है?
पूरी तरह शांति तो नहीं कह सकते, लेकिन एक क्लैरिटी जरूर आती है। स्कूल का बाकी साल चलता रहता है, छोटी मोटी बातें होती हैं, बॉय गर्ल पार्टी, फिलिप लेरॉय पर क्रश,
नैन्सी के झूठ का भी पता चलता है शायद।
हाँ, उसका भी। और फिर बिल्कुल स्कूल खत्म होने के टाइम पर, जब उसके माता पिता शहर से बाहर होते हैं,
तब
आखिरकार मार्गरेट को उसके पीरियड शुरू होते हैं।
फाइनली।
हाँ, लेकिन ये कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं होता, ये बहुत ही निजी, बहुत शांत सा पल होता है। एक जीत, लेकिन उसकी अपनी। अब उससे बाहरी वैलिडेशन की उतनी जरूरत नहीं।
ये उसके अपने सफर का एक माइलस्टोन है।
बिल्कुल। और उपन्यास खत्म होता है मार्गरेट की एक और प्रार्थना से।
फिर से वही, आर यू देयर गॉड।
हाँ, लेकिन इस बार वो कुछ मांग नहीं रही, वो शुक्रिया अदा कर रही है। वो कहती है, आर यू देयर गॉड, इट्स मी मार्गरेट, आई नो यू आर देयर गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक्स एन ऑफ अ लॉट।
जैसे उसे एक तरह का सुकून मिल गया है, भले ही सारे जवाब नहीं मिले।
एग्जैक्टली।
वाह, ये कहानी, इसमें कितनी सारी पढ़ते हैं। सबसे बड़ा थीम तो पहचान और अपनेपन की तलाश का ही लगता है।
हाँ, ये सेंट्रल थीम है। मार्गरेट का हर सवाल, उसकी हर कोशिश, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ फिट होती हूँ, इसी से जुड़ी है।
सामाजिक पहचान, शारीरिक, धार्मिक, व्यक्तिगत, हर लेवल पर।
और उसकी ईश्वर से बातचीत इसी तलाश का सबसे निजी रूप है। उपन्यास यही दिखाता है कि पहचान कोई फिक्स चीज नहीं, एक प्रोसेस है।
बिल्कुल। और दूसरा बड़ा मुद्दा जो ये उठाता है, वो है प्यूबर्टी, किशोरावस्था की चिंताएं।
ओ हाँ, ब्लूम ने जिस ईमानदारी से, जिस बेबाकी से लड़कियों के शरीर में होने वाले बदलावों और उससे जुड़ी भावनाओं को लिखा,
वो अजीब लगना, बेसब्री, कन्फ्यूजन।
हाँ, वो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने इन बातों को नॉर्मलाइज किया। लाखों लड़कियों को लगा कि हाँ, कोई हमारी बात कर रहा है, हम अकेले नहीं हैं।
खासकर पीरियड्स जैसे विषय पर जो चुप्पी थी, उसे तोड़ा उन्होंने।
बिल्कुल।
फिर धर्म बनाम व्यक्तिगत आध्यात्मिकता का सवाल भी है।
हाँ, ये बहुत अहम है। मार्गरेट संगठित धर्मों में जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे वो कनेक्शन नहीं मिलता।
असली संवाद तो उसका ईश्वर के साथ सीधा है।
हाँ, उसका अपना, निजी। उपन्यास एक तरह से धार्मिक कट्टरता पर भी सवाल उठाता है ना?
जैसे वो ग्रैंड पेरेंट्स वाला सीन।
हाँ, वो दिखाता है कि कैसे धर्म जोड़ने की बजाय तोड़ने का कारण बन सकता है।
और ये कि विश्वास कितना पर्सनल हो सकता है, सवालों से भरा हुआ।
मार्गरेट को एहसास होता है कि वो दूसरों की तरह विश्वास नहीं कर सकती, उसे अपना रास्ता खुद बनाना है।
दोस्ती और पीयर प्रेशर,
ये भी है।
हाँ।
वो प्रीटीन सेंसेशंस क्लब, दोस्ती में सहारा भी है, कंपटीशन भी है, फिट होने का दबाव कितना ज्यादा होता है उस उम्र में।
नैन्सी का कैरेक्टर दिखाता है कि दोस्ती भी सिंपल नहीं होती।
बिल्कुल। और आखिर में परिवार की भूमिका, पेरेंट्स के अनसुलझे मुद्दे कैसे बच्चों को प्रभावित करते हैं,
बचाने की कोशिश कैसे अकेलापन पैदा कर सकती है, मार्गरेट का अपने माँ बाप पर गुस्सा होना,
हाँ वो चीखना आई हेट माई पेरेंट्स, ये दिखाता है कि परिवार प्यार का सोर्स तो है पर उलझनों का भी। रिश्ते कॉम्प्लेक्स होते हैं।
अगर हम कथा शैली की बात करें तो फर्स्ट पर्सन नरेशन यानी मार्गरेट की आवाज में कहानी कहना,
हाँ ये बहुत असरदार है।
हम सीधे उसके मन में उतर जाते हैं, उसकी फीलिंग्स, उसके डाउट्स सब हमारे सामने होते हैं।
और भाषा भी बहुत संवादात्मक है, जैसे कोई अपनी डायरी लिख रहा हो।
बिल्कुल। और वो ईश्वर से संवाद, वो तो इस उपन्यास की जान है।
हाँ, आर यू देयर गॉड, इट्स मी मार्गरेट, ये छोटे छोटे मोनोलॉग्स
उसकी सबसे गहरी चिंताओं, उसकी उम्मीदों, उसके डरों को सामने लाते हैं। ये सिर्फ एक लिटरेरी डिवाइस नहीं है, ये मार्गरेट के कैरेक्टर का हिस्सा है। और कुछ सिंबल्स भी हैं, प्रतीक।
हाँ, जैसे पीरियड्स और ब्रा, ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं है, ये मैच्योरिटी, बड़े होने, फेमिनिनिटी के प्रतीक बन जाते हैं मार्गरेट के लिए।
और शहर से सबर्ब जाना,
वो भी एक तरह से बचपन से किशोरावस्था के ट्रांजिशन का प्रतीक है। एक जानी पहचानी दुनिया पीछे छूट रही है, एक नई अनिश्चित दुनिया शुरू हो रही है।
और कुछ चीजें बार बार आती हैं, जैसे वो मंत्र।
हाँ, आर यू देयर गॉड का दोहराव उसकी लगातार खोज को दिखाता है, और क्लब का वो मंत्र वी मस्ट इंक्रीज आवर बस्ट, वो उनकी सामूहिक चिंता और अपने बदलते शरीर पर कंट्रोल पाने की बचकानी कोशिश को दिखाता है।
डायलॉग्स कितने रियल लगते हैं।
बहुत। छठी क्लास के बच्चे जैसे बात करते, बिल्कुल वैसा ही लिखा है। ब्लूम ने उस उम्र की दुनिया को, उनकी बातों को, उनकी इनसिक्योरिटीज को बड़े ऑथेंटिक तरीके से कैप्चर किया है।
तो कुल मिला के इस उपन्यास का असर क्या होता है पाठक पर, इसकी स्थायी छाप क्या है?
मुझे लगता है सबसे बड़ा असर होता है वो कनेक्शन का। पाठक को, खासकर उस उम्र के रीडर को, लगता है कि उसे समझा जा रहा है।
हाँ, वो अकेले नहीं है, उनकी भावनाएं, उनके सवाल वैलिड हैं।
बिल्कुल। और इसका सबसे स्थायी संदेश शायद यही है कि जिंदगी में हमेशा सारे जवाब तुरंत नहीं मिलते, और ये ठीक है।
सेल्फ डिस्कवरी एक सफर है, कोई मंजिल नहीं।
हाँ, और सवाल पूछने की, ईमानदार होने की हिम्मत रखना सबसे जरूरी है। ये किताब वर्जनाओं को तोड़ती है, सहानुभूति जगाती है, और हमें कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करना सिखाती है।
तो ये उपन्यास हमें सिखाता है कि बड़े होने का मतलब हमेशा जवाब मिलना नहीं होता, बल्कि अक्सर सवालों के साथ जीना सीखना होता है।
और ये कि सच्ची पहचान किसी बने बनाए लेबल या खांचे में नहीं, बल्कि खुद को ईमानदारी से जानने और स्वीकार करने में है, चाहे वो कितना भी जटिल या अनसुलझा क्यों न लगे।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।